हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण।
ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च करुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।
सो प्रथम अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं जो कि आज समाप्त होने वाली है, और इस चर्चा का विशेष प्रयोजन है रिवीजन। हम जो कुछ पहले अध्याय में कितने दिन हुए, लगभग 8-9 महीने, कितने दिन हो गए आपको याद है? कब क्लास शुरू हुआ था? अप्रैल या मई में कुछ शुरू हुआ था क्लास लास्ट ईयर, 25th of May। सो अभी 25th of May आने को 2 महीने बाकी है, मतलब 10th month, लगभग 10 महीने हमको फर्स्ट चैप्टर के लिए हमने चर्चा की है। सो आशा करते हैं वो 10 महीनों में से 10 मिनट का भी यदि अंदर तक उतरा हो और उससे कुछ परिवर्तन हुआ हो और हमको कुछ जीवन में कुछ बहुत ही ऐसी कुछ बात पता चली हो या गुत्थी खुल गई हो, नहीं खुली हो तो अभी 17 अध्याय और है, पर यदि खुल गई हो तो उसको खुले ही रखिएगा और आगे खोलने का प्रयास कीजिएगा और वो खुली रहे, इसलिए आज हम फिर से उसको थोड़ा रिविजन के रूप में चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय का नाम है क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसका अर्थ हमने इसकी चर्चा की थी पहले अध्याय के जो नाम है टाइटल है उसकी चर्चा की थी। निरीक्षण हो रहा है, किस चीज का निरीक्षण हो रहा है? कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण हो रहा है, हमने क्या करना चाहिए? सेल्फ एनालिसिस, स्वयं का निरीक्षण, निरीक्षण करने का सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई व्यक्ति अपना एनालिसिस करता है, कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है, कैसे पता चलेगा मैं स्वाध्याय कर रहा हूं? हाउ डू वी नो वी आर असेसिंग? यस, बट देन हाउ विल यू सिग्निफाई कि यस दिस इज द इंट्रोस्पेक्शन? हाउ, आई मीन इंट्रोस्पेक्शन शुरू किया है, कैसे पता चलेगा? यस, दैट्स द आंसर। प्रश्न पूछना होगा, प्रश्न उत्पन्न होने चाहिए। कई बार हम कई भक्तों को बोलते हैं तो कहते हैं हमको तो कोई प्रश्न ही, कोई सवाल ही नहीं है, तो हम काहे के लिए सत्संग में आए? कोई टेंशन ही नहीं है। और जिसको टेंशन है उनको बोलते हैं टेंशन ही टेंशन है, काहे के लिए सत्संग में आए? जिसको टेंशन नहीं बोलते, टेंशन ही नहीं है तो काहे के लिए सत्संग में आए? तो प्रश्न हमने जब शुरुआत की थी अध्याय की, तो इस बात से शुरुआत हुई थी भगवद गीता की। भगवद गीता की शुरुआत भी प्रश्नों से ही हुई है। हम अपना हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम कुछ विश्लेषण करने जा रहे हैं, तभी पता चलेगा हमारे मन में जब प्रश्न आएंगे। मन में प्रश्न आने चाहिए, बहुत आवश्यक है। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमने कहे थे, वो कौन से है महत्वपूर्ण प्रश्न? There are few very important questions। उस समय कहा था वेरी इंपॉर्टेंट, हु एम आई? अब आगे आप बोलिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं कैसे जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं? संसार में सुख है दुख है, मुझे दुख क्यों आता है? कभी डिमांड नहीं करता हूं फिर भी आता है, कोई दुख मांगता नहीं है फिर भी अपने आप अनायास आ जाता है, क्यों? ये सब चर्चा हमने पहले की थी, और इसी को एनालिसिस कहते हैं, इसी को स्वाध्याय कहते हैं, इसी को निरीक्षण कहते हैं। अर्जुन अपने विपरीत परिस्थिति या अनुकूल परिस्थिति, अभी तक जब पहले अध्याय का टाइटल हम चर्चा कर रहे थे तब तक अनुकूल परिस्थिति थी अर्जुन की, और अनुकूल परिस्थिति का भी उन्होंने निरीक्षण किया, और तब क्या कहे, और प्रतिकूल परिस्थिति पर परिस्थिति बदल गई। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये तो बदलते रहता है, तो बदल गया। तब अर्जुन ने क्या परिस्थिति का विवरण किया, ये हम सब चर्चा की है। यदि आप किसी को कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो बीच में आप बोल सकते हैं, क्योंकि इट्स जस्ट अ रिवीजन क्लास, है ना? पहले तो अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, किसकी हिम्मत है मुझसे युद्ध करने की? कौन मेरे सामने खड़ा हो जाएगा युद्ध करने की? जरा मैं देखूं तो सही, सेने और उभयोर मध्ये, चलो मेरा रथ दोनों के बीच में ले चलो, मैं देखूं तो सही किसकी हिम्मत है मुझसे लड़ने की। और जब पहुंच गए तब फिर सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापितम केश, और रथ स्थापित हो गया सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों तरफ की आर्मी देखी क्या हो गया। नाउ द सिचुएशन इज चेंज, तो उनका विवरण एनालिसिस भी चेंज। नाउ व्हाट, युद्ध नहीं करना है, ये कैसे करें? समस्याएं उत्पन्न हो रही है, प्रश्न निर्माण हो रहे हैं, प्रश्न निर्माण हो रहे हैं अर्जुन के मन में। मैं ही क्यों, कृष्ण को मैं ही मिला? कि बाण चलाने के लिए गुरु पितामह द्रोणाचार्य आचार्य, मेरे पितामह मेरे सगे संबंधी, इनको मारने के लिए इन्होंने मेरा ही चयन क्यों किया? मैं ही मिला इनको, मुझे नहीं करना है युद्ध, क्यों करूं युद्ध? करके लाभ क्या है, क्या लाभ है युद्ध करके? देखिए, भीष्म पितामह असुरक्षित अनुभव करते थे, अपने तत्वों के आधार पे वो सोचते थे मेरा तत्व है, मैं वो मेरे तत्व को मानता हूं और मेरा तत्व मुझे कहता है कि मैंने हस्तिनापुर का रक्षण करना चाहिए, द प्रिंसिपल। सो भीष्म पितामह वाज फीलिंग इनसिक्योर अबाउट हिज प्रिंसिपल और धृतराष्ट्र वाज फीलिंग इनसिक्योर अबाउट हिज पोजिशन। उनको राजा बनना था, उनको असुरक्षितता का अनुभव हो रहा था, मेरा राजा राज गद्दी चली गई तो मेरा कैसे होगा, फिर क्या होगा। सो उनको असुरक्षित लग रहा था अबाउट हिज पोजिशन, द्रोणाचार्य को असुरक्षित लग रहा था, फॉर व्हाट, अपने पुत्र के प्रति जो आसक्ति थी, उनको पुत्र का बड़ा कल्याण करना चाहते थे, उनको कोई राज्य का राजा बनाना चाहते थे, उनको दुर्योधन से कौरव से अपेक्षा थी कि ये कोई तो राज्य इनको देंगे। सो ही वॉज ऑल्सो इनसिक्योर, फीलिंग इनसिक्योर। क्यों? क्योंकि पुत्र के प्रति अटैचमेंट, तीनों के तीनों असुरक्षित थे। हा? हमने देखा थ्रू आउट, पहले अध्याय में हमने ये सब चर्चा की है। They were not ready to forgo, छोड़ने के लिए तैयार, जाने दो, देख लेंगे क्या है, थोड़ा बहुत होने दो, जाने दो। किस लिए जाने दो? धर्म के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए। यदि ये थोड़ा सोचते, भीष्म पितामह सोचते कि मेरे प्रिंसिपल को जाने दो समाज के लिए, ठीक है, forgo, क्या होता था? युद्ध नहीं होता था। परंतु जब व्यक्ति जाने दो वाली बात, विशेषकर समाज के लिए, धर्म के लिए जाने दो वाली बात को नहीं अपनाता और अपने ही एजेंडा पे, अपने ही तत्वों पे अधिक हो जाता है तो समस्याएं उत्पन्न होती है। युधिष्ठिर महाराज देखिए सत्यवादी है, सत्य उनके जीवन का सार, एसेंस ऑफ हिज लाइफ इज ट्रूथफुलनेस, सत्यवादी है। कृष्ण ने कहा झूठ बोलो, बोले ठीक है लोगों के लिए बोल दिया, क्या हुआ उनका विजय हुआ, भगवान की भक्ति मिल गई, भगवान का संग मिला, विजय प्राप्त हुआ। किस लिए किया? कृष्ण ने कहा इसलिए किया और समाज और धर्म के हित में किया। धर्म के हित में जब कभी कभी फॉरगो करना पड़ता है, कभी कभी जाने भी दो, छोड़ दो, जब ऐसा करते हैं तो सारे समाज का, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो जाता है। परंतु हमने जो देखा पूरी पहले अध्याय में कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र अपनी बातों को जरा भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे छोड़ने के लिए, जिसके कारण अब हमने जब अंतिम 33 श्लोक आपने पिछले सत्र में चर्चा किया होगा तो उसमें यह पता चल रहा है कि अर्जुन भी लगभग वही बात पे अड़ गए। क्या बोल रहे हैं? मैं अधर्म नहीं करूंगा। अब वो अधर्म किसको समझ रहे हैं? अपने जो कर्तव्य कर्म है उसको वो अधर्म समझ रहे हैं और उसको इतना अच्छे से समझ गए हैं अभी तक कि 1.46 में 45 में आपने देखा क्या किया उन्होंने। अभी तक तो आर्गुमेंट्स ही चल रही थी, अभी तक तो बातचीत ही चल रही थी कृष्ण के साथ, अभी क्या कर दिया पिछले शनिवार को उन्होंने, पिछले शनिवार को अभी बस छोड़ दिया, धनुष नहीं करना है, जाओ बस फाइनल, आप युद्ध नहीं करेंगे, हो गया, वो भी अड़ गए। परंतु अर्जुन की विशेषता क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में हम अच्छे से उसकी चर्चा करेंगे। अर्जुन की जो स्थिति है और अर्जुन की जो समझ है वह क्या है, वह हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। उसके पहले इस पहले अध्याय का मैं फिर से एक बार विवरण आपको बताता हूँ। कोई अब्सेंट रहा हो उस समय, किसी ने लिखा ना हो तो वो नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले अध्याय में जो 46 श्लोक है, 46 श्लोक है, उस 46 श्लोक के दो सेक्शन है, एक पहला भाग और एक दूसरा भाग। पहले भाग का अर्थात पहला भाग है 27वें श्लोक तक, पहले श्लोक से लेके तो 27वें श्लोक तक पहला भाग है, और इस पहले भाग के भी विभाग है। तो ये 27 श्लोकों के भी विभाग है। तो पहले श्लोक से तो 11वें श्लोक तक युद्ध की तैयारी का वर्णन है, प्रिपरेशन ऑफ वॉर। फिर से एक बार बता रहे हैं, इसलिए पटापट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1.1 टू 1.11 यह 11 श्लोक युद्ध की तैयारी दर्शाते हैं। उसके पश्चात 12 से 20 1.12 टू 1.20 पांडवों के विजय के शुभ संकेत इसमें वर्णन है, पांडवों के विजय के शुभ संकेत 1.12 टू 1.20। तीसरा भाग है 21 से 27 तक विभाग 1.21 टू 1.27, इसमें भक्तवत्सल भगवान, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भक्तवत्सल, भक्त के प्रति प्रेम, ये भगवान का स्वभाव है। अब दूसरा विभाग, दूसरा भाग, दूसरे भाग 28 से 40 श्लोक तक 1.28 टू 1.46, इसमें अर्जुन जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, और युद्ध नहीं करने के बहुत सारे कारण बता रहे हैं, विशेषकर पांच जो कारण अर्जुन बताते हैं उसका हम चर्चा किए हैं। 1.28 से 1.30 इन श्लोकों में हमने देखा अर्जुन के मन में करुण भाव जागृत हुआ है, बहुत करुणा आ गई उनके अंतकरण में अपने भाइयों के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, और उस करुणावश वो कह रहे कि अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। 1.28 टू 1.30 करुणा, फिर 31 टू 35 एंजॉयमेंट। अर्जुन कहे इन चार श्लोकों में अर्जुन ने कहा कि सुख को प्राप्त करके करूंगा क्या, व्यक्ति सुख क्यों प्राप्त करता है, हम सब सुख क्यों प्राप्त करते हैं, हमारा सुख देखने वाला कोई है इसलिए, दिखाने के लिए मैं सुख प्राप्त किया, गाड़ी बंगला मोटर कार है, अभी उसका क्या करूंगा यदि कोई देखने वाला ही नहीं होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं ऐसा सुख क्या काम का जिसको मैं किसी को दिखाई नहीं पाऊंगा, सब समाप्त हो जाएगी, क्या करूंगा ऐसे इंजॉयमेंट का, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। उसके पश्चात 36 टू 38 भय, किस चीज का भय, धृतराष्ट्र को कौन सा भय था, राज्य जाने का भय था। अर्जुन को कौन सा भय था, अर्जुन को अपना राज्य चला जाएगा इसका भय नहीं था, बल्कि अर्जुन तो कहे कि ये ले लो सब, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जंगल में जाके सन्यासी बन जाता हूं, उसका भय नहीं था, उसका भय धृतराष्ट्र को था। तो अर्जुन को भय इसका था, अर्जुन पाप से डर रहे थे, पाप कर्म करने से भयभीत थे। यह भक्त का लक्षण होता है, वो नुकसान से नहीं डरता है, भौतिक हानि से नहीं डरता है, कोई भय नहीं होता है, भय होता है किसका, उसको पाप कर्मों का भय भक्तों को होता है, पाप नहीं करना चाहते, पाप कर्म नहीं करना चाहते, है ना। सो पाप कर्मों का अर्जुन को भय था, और अर्जुन कहने लगे कि यदि मैं ऐसा सब पाप कर्म करूंगा मैं तो नरक में चला जाऊंगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। 36 टू 38 और 39 टू 43 39 से 43 तक डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली वैल्यूज, कुल परंपरा का नाश। यदि युद्ध करूंगा और युद्ध करने से सारे सारे बड़े बुजुर्ग समाप्त हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, सब बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे, तो कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? और कोई मार्गदर्शन करने वाला ही नहीं रहेगा तो सारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, और सारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तो विध्वंस हो जाएगा। फिर ऐसा युद्ध किस लिए करूं? इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। और फिर 44 से 46 इसमें अर्जुन इनडिसीजन, निर्णय क्षमता समाप्त हो गई, अभी अभी कुछ नहीं करेंगे अर्जुन, इनडिसीजन, अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा, दैट्स इट, बस फाइनल डिसीजन, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं कर्तव्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात मैं अपने कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा। इतने सारे कारण थे जिसकी चर्चा हमने ऑलरेडी की है। कुछ नया लगा है क्या? कुछ नया सुना ऐसे लगा? पुराना ही है ना? ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भौतिक आसक्ति से व्यक्ति को शोक होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। भौतिक आसक्ति जितनी बढ़ेगी उतना शोक बढ़ेगा। अर्जुन को तो भौतिक आसक्ति नहीं थी, फिर शोक क्यों बढ़ रहा है? शोक तो बढ़ा ना, दुखी हो गए अर्जुन। अर्जुन हंसते हंसते तो नहीं बोले कृष्ण को, हे कृष्ण मैं तो सब समझ गया, ये तो सब ऐसा ही है, जस्ट आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, ऐसा नहीं बोले अर्जुन। ही वॉज वेरी अनहैप्पी, शोक मग्न थे, शोक ग्रस्त थे, उनको तो भौतिक आसक्ति नहीं थी। हम ज्यादातर अभी तक यही तो समझते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, जितनी ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा शोक। पर यहां पे अर्जुन को तो आसक्ति नहीं है, फिर शोक क्यों हुआ? कुछ बता सकते हैं? पर उनको उस आसक्ति तो नहीं थी, अटैचमेंट तो नहीं था, कि था? अटैचमेंट थी। हमने पहले भी कहा है कि अर्जुन क्या सोच रहे इस समय और थोड़ी देर पहले क्या सोचे थे। पहले लड़ने के लिए तैयार थे, उस समय उनकी स्थिति क्या थी? आसक्ति थी, कॉन्फिडेंस था, अहंकार नहीं था, आत्मविश्वास था, क्योंकि युद्ध तो उन्होंने शुरू नहीं किया। यदि वे युद्ध शुरू करते तो अहंकार बोला जा सकता, युद्ध तो कौरवों ने थोपा, इसलिए अहंकार नहीं आत्मविश्वास कहा जाएगा। उनको आत्मविश्वास था और युद्ध करने के लिए तैयार थे, परंतु जब दृश्य देखा परिस्थिति बदल गई, अब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा कौन सा विचार इतना प्रभावी हुआ कि जो पहले के कर्तव्य कर्म वाले विचार को नष्ट कर दिया? स्वजनों का भाव, स्वधर्म से ज्यादा स्वजनों के प्रति मोह, स्वजनों के प्रति मोह, स्वधर्म के प्रति नहीं। पहले तक क्या था? स्वधर्म, अब क्या हो गया था? स्वजन। हमने ये सेम शब्दों की चर्चा की थी, स्वजन और स्वधर्म। सो इसलिए ये जब व्यक्ति स्वधर्म का या स्वधर्म के या धर्म के मार्ग पे थोड़ा डेविएट होने लगता है तो शोक और दुख का अनुभव होना शुरू हो जाता है। कभी थोड़ा लेट होता है, कभी और ज्यादा लेट होता है, कभी तुरंत होता है ना? जैसे 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 हम कर्म करते हैं वैसे वैसे यदि वो कर्म धर्म के आधारित नहीं है तो उसके फल हमको मिलते रहते हैं और वो फल शोक के रूप में, दुख के रूप में आते रहते हैं। कभी तुरंत मिलते हैं, कभी आराम से मिलते हैं, है ना। हम रास्ते पे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति हमको मिल गया, हमने एक चाटा लगा दिया उसको, तो हमको फल कब तक मिलेगा? तुरंत मिल जाएगा फल। कोई दूसरा कोई गलती कर लिया किसी ने, कोई मान लो कोई पिक पॉकेटर है, उसने कुछ किसी का पॉकेट उठाया, उसको शिक्षा कब मिलेगी? जब वो पकड़े जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर वो सिद्ध होगा, फिर यानी समय है। कभी कभी उससे भी बड़ा ग्रेव कोई क्राइम करता है, मर्डर वगैरह करते हैं लोग, जीवन निकल जाता है, परंतु होता ही नहीं है सिद्ध। सिद्ध होता ही नहीं, ऐसे कई उदाहरण है, परंतु फिर भी वो कर्म का फल मिलेगा, 100% मिलेगा। कभी जल्दी, कभी लेट, कभी ये जन्म में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। सो धर्म पे आधारित यदि हम कर्म करते हैं, धर्म आधारित कर्म करने से हमको शोक जो होता है, उस शोक यदि आ भी गया तो सहन करने की शक्ति हमको प्राप्त हो जाती है, सहनशीलता हमारी बढ़ जाती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब हम दूसरे अध्याय की शुरुआत आज से कर रहे हैं। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? क्या है? गीता का सार। सब आ गया इसमें नहीं? एसेंस ऑफ भगवद गीता। अब सोचिए, संपूर्ण भगवद गीता का सार है ये दूसरा अध्याय, इसलिए एक भी शनिवार मिस मत कीजिए। दूसरा अध्याय अच्छे से समझे, समझ लीजिए कि भगवद गीता समझ गई। कई भक्त हमको पूछते हैं, प्रभु जी जरा जल्दी जल्दी कीजिए ना, बड़े स्लो चल रहे हैं, 18 अध्याय पूरा होने को कितने वर्ष लगेंगे, पूरी तो हो जानी चाहिए। दूसरा अध्याय हो गया, समझ जाइए भगवद गीता हो गई सार रूप में, एसेंस ऑफ भगवद गीता। सो दूसरा अध्याय गीता का सार, इसको कभी सांख्य योग भी कहते हैं। तो सांख्य अर्थात क्या? विश्लेषण ऑफ व्हाट? सांख्य अर्थात भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये दोनों का विश्लेषण और उन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका भी विश्लेषण। मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा यथावत? किसके द्वारा विश्लेषण कौन करेगा? भगवान कृष्ण कर रहे हैं इसमें। इस भगवद गीता के दूसरे अध्याय में मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, ये संपूर्ण सब्जेक्ट मैटर का डिस्कशन, विवरण, एनालिसिस किसने किया है? भगवान श्री कृष्ण ने किया है, और उसको एज इट इज श्रील प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया हुआ है, एज इट इज यथारूप, है ना। सो पहले अध्याय में आपने सोचा होगा कि कृष्ण आए ही नहीं, अभी दूसरे अध्याय से ही कृष्ण आएंगे, ऐसे नहीं है। एक बार कृष्ण आए थे थोड़ी देर, कुछ एक आध मिनट के लिए, आपने ध्यान दिया कि नहीं? पता नहीं उनके ऊपर, उनके तरफ, कृष्ण की तरफ ध्यान दिया था क्या? क्या बोले थे कृष्ण? क्या बोले थे? हाँ, अर्जुन को बोले थे, देखो देखो ये कौरव सेना को, देखो अर्जुन देखो, इतना ही बोले बस। और बाद में जो अर्जुन बोलने शुरू हुए, तो अभी तक अर्जुन ही बोल रहे हैं, परंतु दूसरे अध्याय में कृष्ण बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? वो कहेंगे कि ये भौतिक जगत क्या है, मटेरियल वर्ल्ड क्या है। मटेरियल वर्ल्ड अर्थात ये होल क्रिएशन, मटेरियल क्रिएशन, इसमें हमारा शरीर भी आ गया। शरीर जो पंच महाभूतों से बना हुआ है वो भी आ गया, इसमें सूक्ष्म शरीर है मन वो भी आ गया, उसमें अहंकार है वो भी आ गया, इसमें शुद्ध सात्विक बुद्धि है उसकी भी चर्चा है। और ये सब कुछ जिसके कारण चेतन अवस्था पाया है अर्थात आत्मा, उसकी भी चर्चा है। और इन सब का आपस में क्या रिलेशन, मेरे शरीर का मेरे मन से क्या रिलेशनशिप है, मेरे मन का मेरे बुद्धि से क्या संबंध है, मेरे बुद्धि का अहंकार से क्या संबंध है, इन सब का आत्मा से क्या संबंध है, और ये सब पर्सनालिटी का, संपूर्ण व्यक्तित्व का भगवान के साथ क्या संबंध है, ये प्रकृति के साथ क्या संबंध है, ये प्रकृति कैसे बनी है, प्रकृति का स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, ये एनालिसिस है संपूर्ण दूसरे अध्याय में। क्योंकि पहले अध्याय में केवल प्रश्न हुए हैं और प्रश्नों के उत्तर दूसरे अध्याय में भगवान देंगे, क्योंकि अभी तक तो केवल संशय ही व्यक्त किए हैं अर्जुन ने। क्या किया है अर्जुन ने अभी तक पूरे अध्याय में, पहले संशय ही व्यक्त किए हैं, ओनली डाउट्स एंड डाउट्स एंड क्वेश्चंस एंड डाउट्स, दैट्स इट, केवल संशय व्यक्त किए, संशय व्यक्त करते 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 पूरे भ्रमित हो गए। इसलिए कभी ज्यादा संशय व्यक्त नहीं करना चाहिए। हमने कहा था आपको याद है, यस, ओवर एनालिसिस, नो एनालिसिस एंड राइट एनालिसिस, थ्री टाइप्स ऑफ एनालिसिस। वन इज ओवर एनालिसिस, जस्ट ओवर एनालिसिस ही करते बैठो, कोई हो मूवमेंट ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, वेरी इल्यूजरी स्टेट ऑफ माइंड। नो ओवर एनालिसिस नॉट रिक्वायर्ड। सो ऐसे ही अर्जुन ने संशय व्यक्त करते 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 स्वयं ही भ्रमित हो गए। और अब दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में फिर उनकी ये विशेष बात है, अर्जुन की जो स्पेशलिटी है जिसके कारण भगवद गीता हुई है। अर्जुन ये बात समझ गए और कहे कि अभी मुझे कृष्ण को समर्पित हो जाना चाहिए, दैट्स इट। कार्पण्य दोषो प्रहृत स्वभाव 2.7 में अर्जुन कहेंगे, जो कि ना तो द्रोणाचार्य ने कहा, ना तो भीष्माचार्य ने कहा, ना धृतराष्ट्र ने कहा। इनसिक्योरिटी इज देयर एवरीवेयर। भीष्म पितामह के पास भी असुरक्षितता का भाव, द्रोणाचार्य के पास भी असुरक्षितता का भाव, धृतराष्ट्र के पास भी असुरक्षितता का भाव, अर्जुन के पास भी असुरक्षितता का भाव है। पर इसमें अर्जुन भिन्न क्यों है? क्योंकि कृष्ण के पास गए और क्या कहे कि भाई अभी ऐसा है, यू आर ऑल्दो यू आर माई फ्रेंड, दैट्स फाइन, आप मेरे मित्र हो ठीक है, लेकिन अभी से आप मेरे गुरु, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर हूं, समर्पित हूं, आप मुझे धर्म का मार्ग सीधा सीधा सच्चा सच्चा बताइए, सच्चा धर्म का मार्ग बताइए। और जब कृष्ण ने बताया पूरा, जब भगवद गीता हुई, तब अर्जुन कहे करिष्ये वचनं तव, फिर के हा केशव सब समझ गया, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनं तव। वो कहेंगे मेरा तो मोह नष्ट हो गया, मोह जब नष्ट हो जाता है तो स्मृति प्राप्त हो जाती है, स्मृति लब्ध्वा, स्मृति प्राप्त हो गई, अब आप जैसा बोलो वैसे उस दिशा में बाण चलाऊंगा, बताओ कहां लगाओ निशाना। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, ऐसे अर्जुन कहेंगे बाद में। सो दैट वे अर्जुन इज डिफरेंट, अर्जुन भिन्न है इन बाकी सभी से, क्योंकि वे कृष्ण को, क्या द्रोणाचार्य को कृष्ण कौन है पता नहीं था? क्या भीष्म देव को कृष्ण कौन है पता नहीं था? क्या धृतराष्ट्र को पता नहीं था? फिर अर्जुन ने जाके कृष्ण को ये बोला और ये तीनों ने नहीं बोला? इस बात पे आप विचार कीजिए नेक्स्ट शनिवार तक, नेक्स्ट शनिवार को इसका उत्तर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सब असुरक्षित है, सब विद्वान है, सब शास्त्र के ज्ञाता है। भीष्माचार्य तो अर्जुन से भी विद्वान है, द्रोणाचार्य तो अर्जुन के गुरु है, और धृतराष्ट्र अर्जुन के ताऊजी पिता समान है। तो अर्जुन को समझ में आ गया टू सरेंडर टू कृष्णा, इनको क्यों नहीं आया होगा? क्या इनको पता नहीं था कृष्ण भगवान है, या कृष्ण की शक्ति से अपरिचित थे, या क्या था? ऐसी कौन सी बात थी जो कृष्ण को समझ सॉरी अर्जुन को समझ में आई और बाकी को नहीं आई? इस बात इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे नेक्स्ट शनिवार को अवश्य दीजिए। हाँ, थोड़ा सा विचार कीजिए। कहा ज्ञान दिया? अभी तो ज्ञान ही नहीं दिया, शरणागत तो स्वयं ही हो गए वो। तो सखा थे अभी तक भी, तो सखा ही थे अभी जब वो भ्रमित हुए, तब भी तो सखा ही थे, तब कौन से अलग थे वो? ठीक है, परंतु क्या फिर द्रोणाचार्य भीष्माचार्य को ऐसे लगता था कृष्ण सही रास्ता नहीं दिखाएंगे? उनको कुछ डाउट था शायद, नहीं अपने ऊपर ज्यादा विश्वास, वही तो बोल रहा हूं ना मैं कि कृष्ण पे नहीं था, ऐसा आपका कहना है। पर वो तो जानते थे कृष्ण, अब द्रोणाचार्य देखिए अंतिम समय में क्या बोले, सॉरी भीष्माचार्य, उनका अंतिम समय यदि भीष्म पर्व को महाभारत में देखे, हमने एक बार कहा भी था सुवर्ण वर्ण हेमांगो श्लोक कहा था ना, भीष्म देव ऐसे एकमात्र भक्त है जिनको चैतन्य महाप्रभु का रूप उस समय दिखा था, कृष्ण ने दिखाया कि ये मैं आने वाला हूं, देखो ये रूप मेरा होने वाला है। इतने बड़े उच्च कोटि के भीष्माचार्य, ये कैसे हो सकता है कि उनको इतना विश्वास नहीं होगा कृष्ण? ऐसे हो सकता है? आप उत्तर के आसपास पहुंच गए, उत्तर मैंने ही दिया अभी थोड़ी देर पहले एक्चुअली। वो कृष्ण को जानते थे, कृष्ण के भगवत तत्व को समझते थे, कृष्ण को सब कुछ मानते थे, लेकिन कृष्ण से भी ऊपर अपने प्रिंसिपल को मानते थे। धृतराष्ट्र कृष्ण को जानते थे कि ये यदि पांडवों के पक्ष में है तो मेरे लिए बहुत खतरा है, ये क्या करेगा, ये मुझे पूरे कौरवों को हरा देगा, ऐसा धृतराष्ट्र जानते थे। परंतु कृष्ण से भी ऊपर उनके लिए क्या था? उनकी पोजीशन थी। हाँ, वो कृष्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। कृष्ण को जब दुर्योधन ने कहा इस ग्वाले को पकड़ो और नजर कैद कर दो, बंदीशाला बंदी गृह में डाल दो इसको, ये आके मुझे सिखा रहा है शांति शांति संदेश, ये कौन होता है, ये ग्वाला है, इसको इतनी बुद्धि कहां से आई, इसको पकड़ो और डाल दो नजर कैद कर। और उस समय धृतराष्ट्र देखते रहा, देख रहे थे, सुन रहे थे, वो द किंग। क्यों? क्योंकि उनको अपनी पोजीशन, अपना राज्य, राजा ये सबसे ऊपर था धृतराष्ट्र को, कृष्ण के भी ऊपर। और कौन रह गए? द्रोणाचार्य, वो तो गुरु थे, हाँ, उच्च कोटि के ब्राह्मण, उनको भी नहीं समझ में आया। समझ में तो आया, परंतु क्या हुआ, उनको ये लगा कि उनके पुत्र को यदि कोई राजा बना सकता है तो हस्तिनापुर ही बना सकता है। हस्तिनापुर का सिंहासन ही इनको कोई देश का राजा बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। तो पुत्र मोह उनको कृष्ण से भी ऊपर हुआ है ना। अब अर्जुन की दशा यह कि अभी तो वो मोहित हो गए, परंतु ये अपने सारे मोह को, सारे पोजिशंस को, सारे विचारों को उन्होंने क्या कर दिया, कृष्ण ये देखो सब तुम्हारे चरणों पे समर्पित, मुझे ऐसा समझो कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं, ना पुत्र, ना राजधर्म, ना राजा, ना हस्तिना, कुछ नथिंग है ना। तब जाके कृष्ण भगवद गीता बोलना शुरू किए। तब तक कृष्ण थोड़ी ना भगवद गीता बोले, कभी देखा आपने बीच में कृष्ण ने रोका अर्जुन को, इतने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं अर्जुन ने अभी तक, कभी बीच में अर्जुन कृष्ण ने कहा रुको बस हो गया अभी सुनो अभी मैं क्या बोलता हूं, ऐसा किया नहीं, किया नहीं किया। जब अर्जुन ने कहा कि मैं समर्पित हो गया हूं, शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं समर्पित हो गया हूं, मेरा शिष्य के रूप में स्वीकार करो, मैं थक चुका हूं, मेरी सारी बुद्धि नम हो गई है, कुछ काम नहीं कर रही है, स्मृति चली गई है, मैं कुछ शारीरिक दृष्टया क्षीण कृपण हो गया हूं, अब आप बताओ। ऐसा बोले तब जाके कृष्ण भगवद गीता बोलना शुरू किए। यदि हम चाहते हैं कि कृष्ण हमसे कुछ बात करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे, कुछ हमसे बात करे, तो क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, और एक तू ही है कृष्ण, तब जाके कृष्ण कहेंगे ठीक है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम त्वाम स्वरूपापेभ्यो मोक्षेश्वरमाशु, तब कृष्ण कहेंगे। पर कृष्ण तब तक नहीं कहते, समर्पण चाहिए जो अर्जुन के पास था। तो इस अध्याय का विवरण हम संक्षेप में बताते हैं ताकि नेक्स्ट शनिवार से पहले श्लोक को हम शुरुआत कर सके। ये दूसरे अध्याय का जो पहला सेक्शन है, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से तो 10वें श्लोक तक, 2.1 to 2.10, अर्जुन का संशय जारी रहेगा। ऐसा मत समझिए कि दूसरे अध्याय शुरू होते से अर्जुन का संशय खत्म हुआ, नहीं, थोड़ी देर कंटिन्यू रहेगा और संशय कंटिन्यू रहेगा, और फिर उसके बाद समर्पण करेंगे अर्जुन, सरेंडर हो जाएंगे, हैंड्स अप, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो समर्पण, और साथ ही साथ आगे युद्ध नहीं करने की कुछ और कारण भी बताएंगे, और सपोर्टिंग रीजंस व्हाई टू नॉट टू फाइट वार, युद्ध क्यों नहीं करना है, उसके और कुछ कारण दो चार और बताएंगे अर्जुन समर्पण करने के पहले। हाँ थोड़ा और बात करेंगे। फिर दूसरा सेक्शन, सेक्शन वन, सेक्शन टू, 11वें श्लोक से तो 30वें श्लोक तक, 2.11 to 2.30, इसमें कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देंगे। बहुत सारे पहले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर भी हो गए, हम बताएंगे आपको प्रत्येक श्लोक के समय बताएंगे कि देखो पहले अध्याय के वो श्लोक में ये अर्जुन ने पूछा था, आप देखो कृष्ण ने कैसे उत्तर दिया, यू विल हैव टू कनेक्ट इट, हम आपको बताएंगे, वो आपको कनेक्ट रख करना होगा, आपके इसमें नोट डाउन करना होगा। दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, टेक इट वेरी सीरियसली। सो ज्ञान देंगे, ज्ञान में विशेषकर मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, आत्मा क्या है, क्या आत्मा मरता है, क्या आत्मा को मृत्यु है या नहीं है, क्या शरीर को मृत्यु है या नहीं है, आत्मा को मृत्यु नहीं और शरीर अमर नहीं, आत्मा को मृत्यु नहीं और शरीर अमर नहीं, यह बातें अर्जुन को समझाएंगे कृष्ण 30वें श्लोक तक। फिर तीसरा सेक्शन 3 31 से 38 तक, बहुत बड़ा अध्याय है ये। 31 से 38 तक थोड़ा कर्म कांड के विषय में समझाएंगे। युद्ध के विषय में बताएंगे, युद्ध क्यों करना है, और कर्तव्य कर्म करने से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। कर्तव्य कर्म करने से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। भौतिक सुख अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति या राज्य का भोग। अर्थ भौतिक हर कोई चाहता है ना, स्वर्ग का आनंद मिल जाए, कहते हैं, है कि नहीं? स्वर्ग का आनंद मिल जाए अर्थात क्या? अभी हमको आनंदी होना है, अभी हमको सुख चाहिए, स्वर्ग का सुख चाहिए। तो स्वर्ग का सुख कैसे मिलेगा? किसको कहते हैं स्वर्ग का सुख? स्वर्ग का सुख उसको कहते हैं जो बिना परिश्रम के मिल जाता है। अभी मान लो यहां से आपको दिल्ली जाना है, तो आपको फ्लाइट से जाना होगा, बहुत कंफर्टेबल होता है, तो फ्लाइट का टिकट निकालने के लिए धन तो देना पड़ेगा। धन, उतना धन होगा, वो योग्यता होगी तो फ्लाइट से चले जाएंगे। सो धन की आवश्यकता है, धन देना होगा, वो सुख को प्राप्त करने के लिए धन देना होगा। पर स्वर्ग में क्या होता है पता है आपको? आप गार्डन में बैठे हैं स्वर्ग के, और बैठे अचानक विचार आया, चलो थोड़ा विमान से घूम के आते। तुरंत विमान आ जाता है, आप बैठ भी जाते और घूम के भी आ जाते, ना टिकट, ना धन, ना पैसा, सब संकल्प शक्ति से सब हो जाता है। सुख बिना कुछ दिए सुख मिल जाता है, परंतु उसको क्या लगता है? आपके पूर्व के पुण्य कर्म। परंतु खर्चा बहुत ज्यादा है, स्वर्ग में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है सब कुछ। अब इतना सब आप फैसिलिटी यूज करेंगे तो आपका जो अकाउंट है पुण्य कर्म वाला, कितना फास्ट खाली हो जाएगा पता है आपको? पटापट खाली हो जाएगा, और फिर खाली होने के पश्चात फिर जमा करने के लिए इधर आना पड़ेगा, है ना? तो स्वर्ग का सुख जो चाहते हैं, स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग जैसा सुख प्राप्त होता है यदि हम कर्तव्य कर्म करते हैं, धर्म आधारित कर्तव्य कर्म हम यदि करते हैं तो स्वर्ग या राज्य का सुख हमको प्राप्त हो जाता है। यदि हम पाप करते हैं तो पाप करने से हम कुप्रसिद्ध हो जाते हैं और भौतिक दुख को प्राप्त करते हैं। पापी व्यक्ति कभी ना कभी तो कोई ना कोई कहेगा, अरे क्या पापी है, कुप्रसिद्ध हो जाता है व्यक्ति, और फिर भौतिक दुख का कारण बन जाता है वो पाप। तो ये सारी चर्चा 31 से 38 ये 7-8 श्लोक में भगवान ने की है। फिर सेक्शन फोर में भगवान बुद्धि योग की चर्चा करेंगे, अर्जुन को बुद्धि योग समझाएंगे। 39 से 53 तक, 2.39 to 2.53 तक बुद्धि योग। अब बुद्धि योग में कृष्ण क्या समझाने वाले हैं? बड़ी महत्वपूर्ण बात समझाएंगे कृष्ण। हाँ, अभी तक ये जब समझे किम कर्म किम कर्मेति, उस दिन हम चर्चा किए थे ना, एक दिन कर्म करो तो रिएक्शन आएगी, कर्म करो तो फल भोगना पड़ेगा, प्रतिक्रिया आएगी। तो ऐसे भी कोई कर्म है जिसकी प्रतिक्रिया नहीं आती, रिएक्शन नहीं आती है, वो कैसे करे? द आर्ट ऑफ एक्शन, द आर्ट ऑफ एक्शन, वो 39 टू 53 में बुद्धि योग के द्वारा कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे। ज्ञान से कर्म करो, कर्म करते वक्त ज्ञान से करो, बी कॉन्शियस व्हाइल परफॉर्मिंग एक्शन। फिर पांचवा सेक्शन 5 है, पांचवा भाग 54 से 72 तक, इसमें स्थित प्रज्ञस्य का भाषा अर्थात बुद्धि योग किसको कहते हैं? कृष्ण भावना भावित होना अर्थात एग्जैक्टली क्या? कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स वॉट, बुद्धि योग मीन्स वॉट, समाधि मीन्स वॉट, समाधि कैसे लगती है और आध्यात्मिकता को कैसे प्राप्त करें ताकि इसी शरीर में इसी जीवन में कृष्ण भावना भावित हो सके, इसकी चर्चा 54 से 72 तक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो अतिशय महत्वपूर्ण चर्चा होगी, पहले ही श्लोक से महत्वपूर्ण चर्चा है, दूसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को कहेंगे कि अर्जुन की क्या दशा हो गई है, वहां पे चल रहा है ना टेलीकास्ट, तो संजय धृतराष्ट्र को कहेंगे कि क्या दशा हो गई है अर्जुन की और उससे आगे हम बढ़ेंगे। परंतु महत्वपूर्ण बात है, हम हमेशा यह देखते हैं हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में विशेषकर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हाउ टू लिव पीसफुली, हाउ टू मैनेज रिलेशंस, कैसे संबंधों को मैनेज किया जा सकता है, कैसे संबंधों को उत्तम कोटि के संबंध बनाए जा सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। आप जब देखिए पंच महाभूत अग्नि है, सूर्य है और जल है, समुद्र है, कितना गहरा मित्रत्व है उनमें, क्या रिलेशनशिप है आप देखिए, कभी सूर्य जल को सुखाता नहीं, कभी जल सूर्य को बुझाता नहीं, ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। क्या रिलेशनशिप है, कितना सौहार्दपूर्ण संबंध है। ये मटेरियल वर्ल्ड हमको ये सिखाती है कि हाउ टू लिव पीसफुली विथ कोऑपरेशन, वो हम चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय में, और फिर उसका भगवान के साथ कैसे संबंध है, आध्यात्मिक जगत के साथ क्या संबंध है, उसकी चर्चा होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।